एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
ग्रंथ सार में आज हम एक ऐसी किताब की गहराई में उतर रहे हैं जिसने न सिर्फ अमेरिकी साहित्य पर बल्कि मैं कहूंगी नस्ल, सौंदर्य और आत्म पहचान की हमारी समझ पर भी एक अमिट छाप छोड़ी है। हम बात कर रहे हैं नोबेल पुरस्कार विजेता टोनी मॉरिसन के पहले उपन्यास द ब्लूएस्ट आई की।
हाँ, द ब्लूएस्ट आई, एक ऐसी कृति जो पाठक को अंदर तक झकझोर देती है, सही में असहज करती है और सोचने पर मजबूर तो करती ही है।
बिल्कुल,
1970 में प्रकाशित हुई थी और ये उपन्यास एक युवा अश्वेत लड़की की कहानी कहता है जो नीली आंखों की चाहत रखती है। उसे लगता है कि शायद यही उसकी कुरूपता और जो उसे उपेक्षा मिलती है उसका अंत करेगा।
हाँ, और ये समझना जरूरी है कि मॉरिसन सिर्फ एक कहानी नहीं कह रही, वो अमेरिकी समाज की उस दुखती रग पर उंगली रख रही थी जहाँ श्वेत सौंदर्य के मानक इतने हावी थे
बिल्कुल।
कि वे अश्वेत समुदाय के भीतर भी मतलब गहरे उतर गए थे।
हाँ, जिसे अंतरंगीकृत नस्लवाद कहते हैं।
सही,
मतलब जब समाज का जहर इतना गहरा हो जाए कि आप खुद ही मानने लगें कि आप कमतर हैं सिर्फ अपनी पहचान या अपनी रंगत के कारण।
ये उपन्यास जिस समय लिखा गया वो भी महत्वपूर्ण है, 1970s का दशक।
हाँ, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चल रहा था, ब्लैक आर्ट्स मूवमेंट का समय था।
बिल्कुल,
अश्वेत कलाकार और लेखक अपनी आवाज, अपनी पहचान, अपनी सुंदरता को स्थापित कर रहे थे। तो मॉरिसन का काम इसी आंदोलन का एक बहुत शक्तिशाली साहित्यिक प्रतिबिंब है, कह सकते हैं।
हाँ, और लोरेन ओहायो जहाँ मॉरिसन पली बढ़ी वही इस उपन्यास की पृष्ठभूमि भी है।
पृष्ठभूमि भी वही है,
ये कोई काल्पनिक जगह नहीं बल्कि अमेरिकी यथार्थ का एक जीता जागता टुकड़ा है।
सही।
और मॉरिसन का लक्ष्य था वो जिसे री मेमोरी कहती हैं, मतलब उन भुला दिए गए अनकहे अनुभवों को याद करना और उन्हें आवाज देना।
बिल्कुल, और खास तौर पर अश्वेत महिलाओं और बच्चों के नजरिए से।
हाँ, इसीलिए ये उपन्यास आप देखें तो अनाचार, बाल शोषण जैसे मुश्किल विषयों से कतराता बिल्कुल नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस जटिल और मार्मिक कहानी के धागों को थोड़ा सुलझाएं, इसके पात्रों के दर्द और उनकी यात्राओं को समझें।
हाँ, और उन संदेशों पर भी गौर करें जो मॉरिसन हमें दे रही हैं। तो शुरुआत करते हैं कहानी के केंद्रीय आधार से। समय है 1940-41 का, जगह लॉरेन, ओहायो।
और हमारी नायिका 11 साल की पेकोला ब्रीडलव,
हाँ,
जिसकी बस एक ही धुन है, उसे नीली आंखें चाहिए।
और ये कोई कोई ऐसी वैसी बचकानी इच्छा नहीं है, ये तो उसके अस्तित्व का सवाल बन जाती है।
हाँ, बिल्कुल। और ये इच्छा उस दौर के जो बहुत लोकप्रिय डिकेंजेन प्राइमर थे ना, उनकी दुनिया से सीधे टकराती है।
अच्छा, हाँ, वो प्राइमर।
हाँ, वो किताबें जिनमें एक खुशहाल सुंदर श्वेत परिवार का आदर्श चित्र होता था, वो हरा सफेद घर, लाल दरवाजा, हंसते खेलते बच्चे,
एक परफेक्ट दुनिया।
बिल्कुल एक ऐसी दुनिया जो पेकोला की दुनिया से, जो कि गरीबी, हिंसा, बिखराव से भरी है, उससे बिल्कुल बिल्कुल उलट थी।
और यही विरोधाभास है मेरे ख्याल से जो कहानी की नींव है।
सही कहा।
एक तरफ समाज का थोपा हुआ सुंदरता का आदर्श और दूसरी तरफ पेकोला की कठोर निर्मम वास्तविकता। मॉरिसन जैसे पूछ रहे हैं उस बच्चे का क्या होता है जिसे उसका अपना समाज ही बदसूरत और प्यार के लायक नहीं समझता।
ये बहुत बड़ा सवाल है, और कहानी हमें सुनाती है 9 साल की क्लॉडिया मैक्टियर, वो सूत्रधार है।
क्लॉडिया,
हाँ, वो अपनी बड़ी बहन फ्रीडा और अपने माता पिता के साथ रहती है। उनका घर गरीब जरूर है पर वहाँ प्यार है, एक तरह की स्थिरता है। और ये मैक्टियर परिवार का नजरिया ही है जो हमें पेकोला की त्रासदी को देखने का एक संवेदनशील मंच देता है।
हाँ, क्लॉडिया कहती भी है उपन्यास की शुरुआत में कुछ ऐसा कि चुपके से कहा जाए तो 1941 की पतझड़ में गेंदे की फूल नहीं खिले थे।
हाँ, कितनी अब अशुभ सी पंक्ति है ये, जैसे आगे क्या होने वाला है उसका संकेत दे रही हो।
बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आने वाली अप्राकृतिक घटनाओं और उस समुदाय की विफलता का पूर्वाभास देती है जो अपने सबसे कमजोर सदस्य को बचाने में पूरी तरह नाकाम रहा।
नाकाम रहा।
चलिए अब पात्रों की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सबसे पहले पेकोला ब्रिडलव, जाहिर है।
पेकोला, उसका नाम लेते ही एक दर्द सा महसूस होता है। वो कहानी का दुखद केंद्र है, एक निष्क्रिय शिकार।
निष्क्रिय, हाँ,
उसमें कोई विद्रोह नहीं है, बस एक गहरी उदासी और ये पक्का विश्वास कि वो वाकई में बदसूरत है। प्रेम की जो एक स्वाभाविक मानवीय इच्छा होती है ना, वो उसमें नीली आंखों की चाहत में बदल जाती है।
अच्छा।
उसे लगता है कि अगर आंखें नीली हो गई तो शायद दुनिया उसे अलग तरीके से देखेगी, शायद प्यार करेगी। उसकी यात्रा किसी विकास की नहीं बल्कि एक सुनियोजित विनाश की कहानी है, दुखद अंत।
और इसी निष्क्रियता के बिल्कुल विपरीत खड़ी है हमारी कथावाचक क्लॉडिया।
क्लॉडिया?
हाँ, वो सिर्फ 9 साल की है, लेकिन उसमें एक अलग तरह की समझ है, एक प्रतिरोध है।
बिल्कुल है। क्लॉडिया जो है वो श्वेत सौंदर्य के मानकों को जैसे स्वाभाविक रूप से ही खारिज करती है। वो याद करती है कैसे उसे जो घोरी गुड़ियाएं मिलती थी उन्हें वो तोड़ देती थी, ये जानने के लिए कि आखिर उनमें ऐसा क्या है जो उन्हें प्यारा बनाता है।
अच्छा।
हाँ, उसमें एक गुस्सा है, एक सवाल है। फ्रीडा, उसकी बड़ी बहन, थोड़ी ज्यादा परंपरागत है, लेकिन वो भी अपने परिवार के प्यार और सुरक्षा के घेरे में है। क्लॉडिया की यात्रा तो पैकुला की त्रासदी की गवाह बनने की यात्रा है, जो उसे वयस्कता में अपराधबोध और दुनिया की कुरूपता की एक कड़वी समझ के साथ छोड़ जाती है।
ये पैकुला की त्रासदी को समझने के लिए मुझे लगता है उसके परिवार को देखना बहुत जरूरी है, खासकर उसके माता पिता।
हाँ, बहुत जरूरी।
पॉलिन यानी पॉली ब्रिडलव, उसकी माँ, एक बहुत ही जटिल और दुखद किरदार।
हाँ, पॉली, उसकी कहानी तो एक तरह से पीड़ित से उत्पीड़क बनने की कहानी है। बचपन में पैर में चोट लगी थी, फिर बाद में एक दांत टूट गया, तो वो खुद को हमेशा कमतर और बदसूरत महसूस करती रही। फिर वो सिनेमा की चमक दमक वाली दुनिया में खो जाती है,
फिल्मों में।
हाँ, जहाँ श्वेत नायिकाओं और प्रेम कहानियों के आदर्श उसके मन में ऐसे घर कर जाते हैं कि जब असल जिंदगी उन सपनों से मेल नहीं खाती तो वो कड़वी हो जाती है, बहुत ज्यादा।
तो अपनी निराशा,
हाँ, अपनी निराशा और आत्मघृणा वो अपने ही बच्चों पर और खासकर पैकुला पर निकालती है।
ये तो बहुत।
और विडम्बना देखिए, उसे अपना मूल्य कहाँ मिलता है? उस श्वेत परिवार की सेवा करने में जहाँ वो काम करती है,
हाँ,
जबकि अपने घर में वो प्यार देने में पूरी तरह असमर्थ है।
ये कितना दुखद है। मतलब बाहरी दुनिया की स्वीकृति पाने के लिए वो अपने ही खून को नकार देती है।
बिल्कुल।
और पिता चॉली ब्रीडलव, उसका किरदार तो क्या कहते हैं, और भी ज्यादा परेशान करने वाला है।
चॉली, हाँ, चॉली का चरित्र तो नस्लवाद और व्यक्तिगत आघात से नष्ट हुए अश्वेत पुरुषत्व का एक बहुत भयावह चित्र है। उसका अपना बचपन अनाथालय और उपेक्षा में बीता, फिर किशोरावस्था में जब उसका पहला यौन अनुभव होता है तो कुछ श्वेत आदमी उसे अपमानित करते हैं, उसकी मर्दानगी को कुचल देते हैं।
ओह, ये भयानक है।
हाँ, और ये घाव उसे कभी भरने नहीं देता। वो प्यार करना या पाना सीख ही नहीं पाता। उसकी भावनाएं अक्सर गुस्से और हिंसा में बदल जाती हैं।
और मॉरिसन का साहस देखे, वो चॉली के उस भयावह कृत्य को, जब वो पैकुला का बलात्कार करता है, उसे सिर्फ शैतानी की तरह नहीं दिखाती।
नहीं, वो हमें उसके टूटे हुए बचपन और नस्लीय अपमान की जड़ों तक ले जाती हैं।
हाँ, और ये पाठक को असहज करता है, क्योंकि ये हमें खलनायक के भीतर के इंसान को उसकी टूटन को देखने पर मजबूर करता है, बिना उसके कर्मों को सही ठहराए, जाहिर है।
बिल्कुल, ये पाठक के लिए एक बहुत मुश्किल नैतिक चुनौती है।
हाँ, ये समझना कि दर्द कैसे और दर्द पैदा कर सकता है।
सही कहा।
इसके अलावा पैकुला का भाई सैमी है।
सैमी, हाँ।
जो घर के घुटन भरे माहौल से भागने के लिए आक्रामक हो जाता है, और एक छोटा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण किरदार है सोपहेड चर्च। हाँ, एक ढोंगी आध्यात्मिक गुरु जो पैकुला की नीली आंखों की इच्छा का उसका फायदा उठाता है।
और हमें उन तीन वेश्याओं को भी याद रखना चाहिए, चाइना, पोलैंड और मिस मैरी।
हाँ, बिल्कुल। समाज के हाशिए पर होने के बावजूद वो पैकुला के प्रति कुछ सहानुभूति और स्नेह दिखाती हैं,
जो उसे अपने परिवार या तथाकथित सम्मानजनक समुदाय से नहीं मिलता।
हाँ, बिल्कुल नहीं मिलता। ये सारे पात्र मिलकर उस जटिल सामाजिक ताने बाने को बुनते हैं जिसमें पैकुला फंसी हुई है। हल्की त्वचा वाली मॉरीन पील है, जो अश्वेत समुदाय के अंदर के रंग भेद को उजागर करती है, या फिर गिराल्डीन,
हाँ,
जो अपनी अश्वेतता को दबाकर श्वेत मध्यवर्गीय मूल्यों को अपनाने की कोशिश में अपने ही बेटे के प्रति कितनी क्रूर हो जाती है। अब अगर कहानी के प्रवाह की बात करें, मॉरिसन ने इसे ऋतुओं के चक्र में बांटा है, पतझड़, सर्दी, वसंत, ग्रीष्म।
हाँ, ये संरचना बहुत दिलचस्प है।
ये प्राकृतिक लय पैकुला के जीवन के अप्राकृतिक पतन के बिल्कुल विपरीत चलती है।
बिल्कुल। और हर खंड की शुरुआत में वो डिकंजन प्राइमर के वाक्य हैं जो धीरे धीरे टूटते और बिखरते जाते हैं,
जैसे वो आदर्श परिवार का मिथा की बिखर रहा हो।
सही।
पतझड़ में पैकुला मैक्टियर्स के घर आती है रहने, और हमें दोनों परिवारों के बीच का अंतर साफ नजर आता है।
हाँ, मैटियस के घर में अनुशासन है, प्यार है, भली गरीबी हो, ब्रीड लव्स के यहाँ बिखराव है, कड़वाहट है।
और यही हम पिकोला की वो शर्ली टेम्पल कप के प्रति दीवानगी देखते हैं।
हाँ, वो कप
जो श्वेत आदर्शों के प्रति उसके आकर्षण का प्रतीक है, और क्लॉडिया का गुड़ियों को तोड़ना
वो उसका प्रतिरोध है। हाँ, उसी आकर्षण का प्रतिरोध है। इसी मौसम में पिकोला को पहली बार मासिक धर्म होता है, और उसकी माँ पॉली की प्रतिक्रिया, ओहो, वो बेहद ठंडी और असंवेदनशील होती है।
ये माँ की प्रतिक्रिया ही पिकोला के अकेलेपन को और गहरा कर देती होगी।
बिल्कुल। सर्दी में पिकोला अपने परिवार के पास लौटती है, जो अब एक खाली दुकान के ऊपर बने कमरे में रह रहे हैं। ये खंड जैसे ब्रीडलव परिवार की आंतरिक कुरूपता और समुदाय द्वारा उन्हें बहिष्कृत किए जाने पर केंद्रित होता है।
जैसे वो पूरे समुदाय के पापों का बोझ उठाने वाले बलि के बकरे बन जाते हैं।
हाँ, बिल्कुल। यही मॉरिन पील आती है और रंग भेद का मुद्दा उठता है, कैसे हल्की त्वचा को समुदाय के भीतर भी ज्यादा महत्व दिया जाता है।
और इसी खंड में पॉली की पृष्ठभूमि खुलकर सामने आती है।
हाँ, फिल्मों का प्रभाव, उस शारीरिक कमियों से उपजी हीन भावना, और कैसे वो अपनी सारी कड़वाहट और आत्मघृणा पिकोला पर मर देती है। गेराल्डिन का परिचय भी इसी दौरान होता है।
गेराल्डिन जो सफाई और नियंत्रण के जरिए अपनी अश्वेत पहचान को दबाने की कोशिश करती है,
और अपने बेटे के प्रति भी निर्मम हो जाती है, क्योंकि वो उसकी आदर्श छवि में फिट नहीं बैठता।
वसंत आते आते कहानी का दायरा जैसे और फैलता है।
हाँ, हम समुदाय के अन्य लोगों और उन पर नस्लवाद के असर को देखते हैं,
और चौली की पूरी दुखद कहानी सामने आती है। वो त्यागा हुआ बचपन, वो अपमानजनक यौन मुठभेड़ जिसने उसे अंदर तक तोड़ दिया था।
और कहानी अपने चरमोत्कर्ष की ओर बढ़ती है। पॉली से एक भयानक झगड़े के बाद नशे में धुत चौली घर आता है,
और पिकोला को बर्तन धोते हुए पाता है।
हाँ, और फिर एक अजीब सी विकृत स्नेह, दया और आत्मघृणा के मिश्रण में वो अपनी ही बेटी का बलात्कार कर देता है।
उफ़, ये सुनना ही कितना मुश्किल है। और मॉरिसन जिस तरह इसे दिखाती है, वो पाठक को एक बहुत ही असहज स्थिति में डाल देता है ना?
बिल्कुल। और समुदाय की प्रतिक्रिया, वो भी उतनी ही भयानक है। कानाफूसी, अफवाहें,
और अंत में दोष पिकोला पर ही मर दिया जाता है।
हाँ, जब पता चलता है कि पिकोला गर्भवती है, तो क्लॉडिया और फ्रीडा बच्चों की मासूमियत में एक चमत्कार की उम्मीद में गेंदे के बीज बोती हैं।
उन्हें लगता है कि अगर बीज उग गए तो शायद पिकोला का बच्चा बच जाएगा। एक मासूम सी उम्मीद।
हाँ, एक मासूम उम्मीद। लेकिन ग्रीष्म अपने साथ कोई राहत नहीं लाता, वो विनाश का मौसम है। पिकोला नीली आंखों की अपनी अंतिम हताश इच्छा लेकर उस ढोंगी सो फेट चर्च का पास जाती है।
सो फेट चर्च।
वो उससे एक बीमार कुत्ते को जहर दिलवाता है और उसे यकीन दिलाता है कि उसकी इच्छा पूरी हो गई।
कितना क्रूर मजाक है ये।
हाँ, पिकोला इस धोखे को सच मान लेती है। उसे लगता है कि उसकी आंखें नीली हो गई हैं।
और फिर बलात्कार का परिणाम सामने आता है।
पिकोला पूरी तरह से अपना मानसिक संतुलन खो देती है। वो एक काल्पनिक सहेली से अपनी नीली आंखों की सुंदरता के बारे में बातें करती रहती है।
तो
उसका बच्चा समय से पहले पैदा होता है और मर जाता है।
और गेंदे के बीच
वो भी नहीं उगते। प्रकृति भी जैसे इस त्रासदी में शामिल हो जाती है। समुदाय पिकोला को पूरी तरह से बहिष्कृत कर देता है, उसे पागल मानकर छोड़ देता है।
अंतिम दृश्य वो बहुत ही मार्मिक है। पिकोला शहर के किनारे कचरा बीनती हुई अपनी ही दुनिया में खोई हुई।
हाँ,
और वयस्क क्लॉडिया पीछे मुड़कर देखती है, न सिर्फ पिकोला की त्रासदी पर, बल्कि उस पूरे समुदाय के अपराध बोध पर जिसने इस विनाश में अपनी भूमिका निभाई।
हाँ, ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं, ये एक पूरे समाज की विफलता की कहानी है।
बिल्कुल। और इस दर्दनाक कथा के माध्यम से मॉरिसन कई गहरे विषयों को परत दर परत खोलती है।
हाँ, बहुत सारे। सबसे पहले तो वही श्वेत सौंदर्य मानकों का जहर और वो अंतरंगीकृत नस्लवाद। पिकोला की नीली आंखों की चाहत इसका सबसे दुखद प्रतीक है, जबकि क्लॉडिया का गुड़ियों से नफरत करना वो इसके प्रतिरोध का।
हाँ, और ये उपन्यास ये भी दिखाता है कि कैसे नस्ल, वर्ग और लिंग का उत्पीड़न एक दूसरे से कितना जुड़ा हुआ है।
इंटरसेक्शनैलिटी जिसे कहते हैं।
हाँ, पिकोला गरीब है, अश्वेत है और एक लड़की है। समाज के हर पैमाने पर वो हाशिए पर है, और यही तिहरी भेद्यता उसे सबसे ज्यादा असुरक्षित बनाती है।
बिल्कुल। और परिवार और समुदाय जिन्हें सुरक्षा देनी चाहिए थी, यहाँ बुरी तरह विफल होते हैं। ब्रिडल ऑफ परिवार का टूटना सिर्फ उनकी व्यक्तिगत कमजोरी नहीं, बल्कि उस नस्लवादी व्यवस्था का नतीजा है जो लोगों को अमानवीय बनाती है।
दूसरी तरफ मैक्चर परिवार है,
जो हरीबी के बावजूद एक सुरक्षा कवच देता है।
हाँ, लेकिन समुदाय का रवैया
वो तो पिकोला को बलि का बकरा बनाकर अपनी जिम्मेदारियों से जैसे बच निकलता है।
यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले आघात, मतलब ट्रॉमा, उसका चक्र भी दिखाता है।
हाँ, जरूर।
चौली के साथ जो हुआ वो उसकी हिंसा का कारण बनता है। पॉली की आत्मघृणा उसके बच्चों के प्रति उसकी उपेक्षा में बदल जाती है।
तो ये दिखाता है कि कैसे सामाजिक जुल्म व्यक्तिगत घावों को जन्म देता है, और वो घाव फिर अगली पीढ़ी तक पहुंचते हैं।
बिल्कुल। और कहानी कहने और याद करने की ताकत और सीमाओं पर भी सवाल उठते हैं। क्लॉडिया की आवाज मॉरिसन की री मेमोरी का उदाहरण है। वो उस कहानी को कह रही है जिसे भुला दिया गया था, लेकिन वो खुद मानती है कि कहानी सुना देना उस दर्द को मिटा नहीं सकता जो पेकोला ने सहा।
सही बात है। और निश्चित रूप से अमेरिकी सपने का खोखलापन।
हाँ, वो डिक एंड जेन की आदर्श दुनिया
और ब्रिडलव परिवार की नरकीय वास्तविकता, इनके बीच का अंतर इस सपने के झूठ को उजागर करता है।
एक और दिलचस्प पहलू है दृष्टि का, देखने और अंधेपन का।
हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पेकोला चाहती है कि दुनिया उसे अलग तरह से देखे।
और विडंबना देखिए, अंत में वो पागलपन में एक विकृत दृष्टि पाती है, अपनी नीली आंखों का भ्रम।
जबकि दूसरी ओर पूरा समुदाय अपनी क्रूरता और मिलीभगत के प्रति अंधा बना रहता है।
हाँ, वे देखना ही नहीं चाहते।
मॉरिसन की कथा शैली भी कमाल की है। कई दृष्टिकोणों का इस्तेमाल, क्लॉडिया की मैं शैली पात्रों की पृष्ठभूमि के लिए सर्वज्ञ कथावाचक कहानी को बहुआयामी बनाता है।
डिक एंड जेन प्राइमर का इस्तेमाल, सब मिलकर एक बहुत गहरा प्रभाव पैदा करते हैं।
साहित्यिक उपकरणों का भी क्या खूब इस्तेमाल है।
हाँ, प्रतीक तो भरे पड़े हैं। नीली आंखें, गेंदे, सिंहपर्णी, घर, हर चीज का गहरा मतलब है।
बिंब विधान इतना सजीव है कि आप विक्स की गंध महसूस कर सकते हैं, स्टोर फ्रंट का ठंडापन महसूस कर सकते हैं।
गंदगी और सफाई के रूपक बार बार आते हैं। विडंबना तो जैसे कहानी के रेशे रेशे में बुनी हुई है।
पूर्वाभास हमें शुरू से ही अंत की आहट देता है।
पात्रों के मन की उथल पुथल दिखाने के लिए चेतना प्रवाह तकनीक का इस्तेमाल, और कहानी की खंडित संरचना खुद पात्रों के टूटे हुए जीवन और मानसिक विखंडन को दर्शाती है।
भावनात्मक रूप से ये किताब पढ़ना आसान नहीं है।
बिल्कुल नहीं।
नहीं, ये परेशान करती है, गुस्सा दिलाती है, दुखी करती है। इसमें कोई आसान समाधान या राहत नहीं मिलती।
पाठक को एक तरह की बेचैनी और शायद मिली भगत के एहसास के साथ छोड़ा जाता है। हाँ, मनोवैज्ञानिक फिंसा की ऐसी बेबाक तस्वीर कम ही देखने को मिलती है,
और इसका असर वो लंबे समय तक रहता है। पेकोला की छवि जहन से निकालना मुश्किल है।
बहुत मुश्किल। ये हमें सुंदरता की परिभाषा, आत्ममूल्य के स्रोत और एक समुदाय के रूप में हमारी जिम्मेदारियों पर गहराई से सोचने को मजबूर करती है।
हाँ, ये नस्लवाद और सौंदर्य के मानकों जैसी अमूर्त चीजों को एक बच्ची के जीवन की ठोस भयानक त्रासदी में बदल देती है।
निसंदेह, द ब्लूएस्ट आई सिर्फ टोनी मॉरिसन का पहला उपन्यास नहीं बल्कि अमेरिकी साहित्य की एक आधारशिला है।
बिल्कुल। ये उनके असाधारण कलात्मक साहस और सामाजिक अन्याय के गहरे घावों को कुरेदने की उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है,
और इसकी प्रासंगिकता आज भी उतनी ही है, शायद ज्यादा भी।
हाँ,
सौंदर्य के मानक आज भी हम पर हावी हैं, भले ही उनके रूप बदल गए हों। उत्पीड़न के विभिन्न रूप आज भी मौजूद हैं।
सही कहा।
और करुणा और जिम्मेदारी की पुकार, वो आज भी उतनी ही जरूरी है।
तो ये किताब हमें सोचने पर मजबूर करती है। आज हमारे समाज में सुंदरता के मानक कौन तय कर रहा है, और अनजाने में हम किसे अदृश्य बना रहे हैं।
बहुत गहरा सवाल है।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।